તારીખ 24/10/1995 શ્રી સમયસર કળશ ટીકા ઉપર પૂજ્યભાઈ શ્રી શશીભાઈનું ભાવનગરમાં પ્રવચન સળંગ પ્રવચન નંબર 76
ગૌતમ સ્વામીને પાછું કેવળ જ્ઞાન થયું. કેવળ જ્ઞાન પણ એક અનંત જ્ઞાનના દેવાઓની રૂપમાં આપી શકાય એવો પર્યાય છે. એટલે એ બંને ઉત્સવો એક સાથે છે. ત્યારથી લોકો દિવાળીને દિવસે દિવાળી આમ તો અપભ્રંશ શબ્દ છે. દીપાવલી, દીપોની આવલી, આવલી એટલે સમૂહ, ઘણા દીવાઓનો સમૂહ છે જે પર્વની અંદર એને દીપાવલી કહે છે. પછી એનો ગુજરાતીમાં અપભ્રંશ થઈને દિવાળી દિવાળી બોલાય છે. એ આજના દિવસે વિશેષ પ્રકારે એનું સ્મરણ કરવામાં આવે છે. એટલા માટે આજે નિર્વાણ કલ્યાણક દિવસ છે. ભગવાન મહાવીર સ્વામીનો નિર્વાણ કલ્યાણક દિવસ છે. એની પૂજા પણ આપણે થશે હમણાં દેરાસરમાં, અને નિર્વાણ લાડુ ચડાવશું. અને જે જે મહાત્માઓ આ 24મા નિર્વાણ પધાર્યા એ બધાનું નિર્વાણ કાંડની પણ પૂજા થશે. આપણે આપણા ઉપર તો શાસન નાયક એવા જે મહાવીર સ્વામી છે એમનો ઉપકાર વિશેષ પ્રકારે ગણવામાં આવે. અત્યારે આપણને જે તત્વજ્ઞાનનો અથવા આત્મજ્ઞાન થાય એવા સંજોગો પ્રાપ્ત છે એનું મૂળ કારણ મહાવીર સ્વામીના ભગવાનના સમયમાં જે તીર્થ પ્રવૃત્તિ થઈ, ભગવાનના નિમિત્તે જે તીર્થ પ્રવૃત્તિ થઈ એની પરંપરા અત્યારે ચાલે છે. જ્યારે કોઈ પણ તીર્થંકર ભગવાનનો ઉદય હોય અને એમનો પ્રભાવના યોગ બહુ જબરજસ્ત હોય છે, એ પ્રકારના અલૌકિક અને વિશેષ ટુકડીને લઈને આવેલા છે. એટલે બહુ જ મોટા પ્રમાણમાં શાસન પ્રભાવના થાય છે. એટલે ઘણા જીવો આ માર્ગમાં ભળે છે. નવાની વાત, લાખો કરોડો જીવો આ માર્ગમાં ભળે છે. કેટલાયને આત્મજ્ઞાનની પ્રાપ્તિ થાય છે, લાખો જીવોને, લાખો મુનિઓ થાય છે, લાખો કેવળીઓ થાય છે. એ બધું જે બને છે એ ભગવાનની ઉપસ્થિતિના નિમિત્તે બને છે. દિવ્ય ધ્વનિ મેં જો ઉપદેશ આયા તો ઉપદેશ કે નિમિત્ત છે. અનેક અનેક જીવો કો આત્મલાભ હોતા હૈ, ધર્મલાભ હોતા હૈ, ઓર ઇસકે બાદ જો ઇસ ધર્મ કી પરંપરા ચલતી હૈ વો ઉપદેશ કે ઉપદેશ કો ઝેલ કરકે ગણધર લોગ જો હોતે હૈ વો અંગપૂર્વક કી રચના કરતે હૈ. અંગપૂર્વક કી રચના ફિર શાસ્ત્રારૂઢ ગ્રંથારૂઢ હોતી હૈ. પહેલે તો કંઠસ્થ ચલતા હૈ સબ જ્ઞાન, ફિર આચાર્યોને ઉસકો ગ્રંથારૂઢ કિયા ઓર વો ગ્રંથો મેં સે અનેક જ્ઞાની ઉત્પન્ન હોય. વો જ્ઞાનીઓ ફિર એસે હી ધર્મ પ્રભાવના અભી તક ચલતી રહી. પિછલે 100-200 સાલ મેં જો જ્ઞાની મહાત્મા હુએ ઉસમેં તોડરમલજી સાહેબ હુએ, કરીબ 200 સાલ ઉમર લગી હૈ જયપુર મેં. ઉન્હોને ભી ગ્રંથ લિખા મોક્ષ માર્ગ પ્રકાશક, ગોમર સારથી ટીકા લિખી સમય જ્ઞાન ચંદ્રિકા, બાદ મેં કૃપાળુદેવ હુએ 100 સાલ પહેલે. આજ ભી આપણ દેખતે હૈં હજારો લોગ અજૈન ભી જૈન ધર્મ મેં આને લગે હૈ, ઉનકે વચનામૃત કે પ્રભાવ સે આજ બહોત સી સંસ્થાએ ચલતી હૈ, બહોત સે લોગ ઉસમેં શામિલ હુએ. અપને અપને યોગ્યતા અનુસાર સબકો લાભ હોતા હૈ. ઓર ફિર ગુરુદેવ હુએ, ગુરુદેવ સે તો बहुत बड़ी धर्म की क्रांति आई, जैसे कोई वर्तमान में ही तीर्थंकर हुए हों, ऐसी बड़ी धर्म क्रांति आई। इसलिए गुरुदेव को तो युग पुरुष कहें, ऐसे एक जबरदस्त श्वेतांबर में से, जैन में से कई लोग जैन बने, और आज हिंदुस्तान के करीब करीब सभी बड़े शहर में तो गुरुदेव के अनुयायी देखे जाते हैं, पाए जाते हैं, और सब शास्त्र स्वाध्याय का जो परंपरा प्राय बंद हो गई थी, सब क्रियाकांड में तीनों संप्रदाय में धार्मिक लोग लगे हुए थे, और उसमें से कुछ लोग तत्वज्ञान में आए, तत्वज्ञान का अभ्यास करने लगे, और गुरुदेव के निमित्त से कुछ लोग ज्ञानी भी हुए। वो बहनश्री और फुगानी जी लिखते हैं कि गुरुदेव से ऐसी धर्म प्रभावना हुई है कि पंचम काल के अंत तक ये धर्म जो टिकने वाला है उसमें गुरुदेव जैसे महात्मा का बहुत बड़ी भूमिका बीच में आ गई। उस तरह से ये जो दीपावली पर्व है उसमें से अंतिम तीर्थादिनाथ वर्धमान स्वामी से लेकर जो भी धर्म प्रभावना की परंपरा चली है और आज हम लोगों को भी इसका लाभ मिल रहा है, ये सब भूतकाल के महात्माओं का ही उपकार है, वो उपकार स्मरण का ये दिन है। दीपावली का उत्सव वो नहीं है कि सिर्फ दीवा कर लें घर में, दिया में जलाएं, अच्छे अच्छे कपड़े गहने पहने, मिठाई खा लें, दीपावली हो गया, वो बात नहीं है। इन सभी भूतकाल के पूर्व काल के धर्मात्माओं के स्मरण का ये दिन है, और मुख्य रूप से भगवान महावीर स्वामी के उपकार का ये पर्व दिन है। आज के दिन वो निर्वाण कल्याणक गए हैं, ये दिन आज का चला है। युगान युग से विक्रम संवत भी ऐसे ही चलता है, तो सब साथ में चलता है, 516 साल का कोई डिफरेंस है। 516 साल के बाद उज्जैन में विक्रम हुआ, प्रतापी राजा, त्या से विक्रम संवत चालू हुआ है, और वीर संवत 516 साल पहले से चालू हुआ है। इस तरह से पर्व का जो विशेषता है पर्व की, वो इस कारण से। लौकिक बात अलग है, लौकिक में तो लोग पहले तो अकाउंटिंग ईयर यहाँ से चलता था, वही खाता वो सब चलता था, वो उतना चल गया कि सब भूल गए भगवान को ही। और काल दोष से जैन धर्म का के प्रभाव ना कुछ कम रही, अन्य धर्म का फैलावा ज्यादा रहा, इसलिए भी ये बात बहुत कम लोग जानते हैं। और गुरुदेव कहते थे ये धर्म तो वीर पुरुषों का है, क्षत्रियों का है, जिसमें सुरातन हो, जिसमें पराक्रम करना, साहस करने की वृत्ति हो, उनका ये धर्म है। लेकिन चला गया बनियों के हाथों में, बनिए लोग लोभी होते हैं, तो वो धर्म प्रभावना नहीं कर सके, और वैसे ही वही खाता वो हो, धर्म करते करते भी संसार में कैसे फायदा हो, संसार की अनुकूलता कैसे बढ़े, प्रतिकूलताओं कैसे कम हो जाए, यही प्रकार की वृत्ति बढ़ गई। तो मूल धर्म है वो लेपल रूपायमान जैसा हो गया हो, ऐसी परिस्थिति बन गई। फिर भी जब जब धर्मात्माओं का उदय होता है तो कुछ न कुछ धर्म की प्रभावना होती रहती है, और ऐसे कम होते होते भी पंचम काल का अंत तक चालू रहेगी, क्योंकि लाखों शास्त्र छपे हैं और उनके अध्ययन करने वाले थोड़े बहुत भी होते रहते हैं। સ્વાભાવિકપણે ચક્ષુ છે એ અડધું અડધા મીચાઈ જાય એવી પરિસ્થિતિ કુદરતી બને છે, કે માણસ ગુસ્સે થાય ત્યારે આંખમાં ગુસ્સો દેખાય તો આંખ પોપચા ખુલે, વધારે હશે ત્યારે એના પ્રમાણમાં આંખો પર અસર આવે છે, એમ જીવના પરિણામની અસર મુદ્રા ઉપર અને ખાસ કરીને નેત્રો ઉપર વિશેષ પ્રકારે ભાવોની અસર આવે છે, અને ખાસ કરીને વિશેષ ભાવ હોય છે એટલે ઇમોશનલ ભાવ હોય છે ત્યારે તો આંખ ઉપર, હોઠ ઉપર, નાક ઉપર અસર આવ્યા વિના રહે નહીં, એટલે એક નિમિત્તિક આત્માના ભાવોને અને મુખમુદ્રાને નિમિત્તિક સંબંધ છે, એટલે એ પ્રકારને દેખાવમાં ફરક પડે છે। ધ્યાનસ્થ મુદ્રા જે છે ભગવાનની છે કે મુનિઓની છે કે જ્ઞાનીઓની છે, એ ધ્યાનસ્થ મુદ્રાની અંદર નેત્રો થોડા ઢળેલા હોય છે, એવી જ મુદ્રા સહેજ હોય છે, એવું નિમિત્તિક સંબંધ છે। બસ નેત્રો ઢળે એટલે નાસિકાગ્ર દ્રષ્ટિ જેવી થઈ જાય છે, એવું નથી હોતું કે નાકને જોવાનો પ્રયત્ન થાય છે, પણ નાકને જોવાનો જે રીતે આંખની પોઝિશન થાય લગભગ એવી પોઝિશન ધ્યાનના કાળમાં હોય છે, એટલે પછી એને બતાવવા માટે નાસિકાગ્ર દ્રષ્ટિ અગ્ર એટલે ટેરવો, નાકના ટેરવા ઉપર દ્રષ્ટિ જેને રાખે, પણ ત્યાં કંઈ હેતુ એવો નથી હોતો કે નાકને જોઉં, પણ એવી પોઝિશન બને છે એટલે સમજાવવા માટે ના કહેવું કે નહીં આવતા, તો કોઈ કાવ્ય તો કોઈ અન્ય કવિ કહે કે નાકે રૂપ નિહાલતા, તો ઉસમેં સે અધ્યાત્મ નિકાલા હૈ, એસે હિ કોઈ કવિને તો કોઈ અન્ય હેતુ સે લિખા હૈ કે જિસકા નાક અચ્છા હોતા હૈ ઉસકા મુખમુદ્રા કા રૂપ ભી અચ્છા દિખા જાતા હૈ, આપણે ગુજરાતીમાં એને નમણાશ કહીએ છીએ, નાક ઘાટીલું હોય તો એને એમ કહ્યું નાકે નમણો છે માણસ, અને આમ સુંદર હોય પણ નાક બરાબર ન હોય, ચીવાવલું નાક હોય બરાબર ન હોય તો એને નથી બરાબર ગણતા, નમણાશ નથી ગણતા, એટલે નાકે રૂપ નિહાળે છે લોકો, એક લૌકિક કાવ્ય હોવું જોઈએ, એના ઉપરથી કૃપાલુદેવને એવું કોઈ ભાવશે નિકાલે કે નાક નાસિકાગ્ર દ્રષ્ટિ છે તો સ્વરૂપાવલોકન હોતા હૈ તો ઉસકો નિહાળો, નાક છે તો સ્વરૂપ કા અવલોકન કરો, સ્વરૂપ સ્વરૂપ કી દ્રષ્ટિ કરો, એસા ભાવ નિકાલા હૈ। અગિયાર અંગ ઓર ચૌદ પૂર્વ, ચૌદ પૂર્વ હૈ વો બારમા અંગ હૈ, બારમા અંગ મે ચૌદ પૂર્વ હૈ, અગિયારમાં અંગ ઓર નવ પૂર્વ તક મિથ્યા દ્રષ્ટિ કો શાસ્ત્ર જ્ઞાન હો સકતા હૈ, સમ્યક દ્રષ્ટિ કો હી બારા અંગ કા જ્ઞાન હોતા હૈ, બારા અંગ કા જ્ઞાન મે ગ્યારા અંગ ઓર ચૌદ પૂર્વ આ ગયા, બારા અંગ મેને સંપૂર્ણ શ્રુત જ્ઞાન गणधर देव को ऐसी लब्धि उत्पन्न होती है कि भगवान की दिव्य ध्वनि सुनकर के अंतर मुहूर्त में वो 12 अंग की रचना कर सकते हैं अपने श्रुत ज्ञान में। तो 11 अंग और 14 पूर्व उसको बोलते हैं, यानी 12 अंग 14 पूर्व जो है वो 12 अंग हैं, तो 12 अंग बोल में संपूर्ण श्रुत ज्ञान आ गया। तो उसके नाम हैं और उसमें पहले आचारंग है, तो आचारंग में 51,000 से अधिक श्लोक हैं। फिर सुयग्डांग है तो उसमें डबल 1 करोड़ से 51,000 1 लाख से भी अधिक श्लोक हैं। फिर ऐसे जो भी विश्व अंग पुरवाते हैं उसमें डबल डबल श्लोक हैं। फिर 2 लाख, फिर 4 लाख, तीसरे अंग में 2 लाख, चौथे अंग में 4 लाख, पांचवें अंग में 8 लाख, छठे अंग में 16 लाख, सातवें अंग में 32 लाख, और फिर आठवें अंग में 64 लाख, बाद में 128 लाख, फिर 256 लाख, फिर 516 लाख श्लोक, 1,132 लाख श्लोक, ऐसे फिर उतने 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 करोड़ों श्लोकों का, करोड़ों श्लोक होता है 12 अंग में, करोड़ों श्लोक होता है 12 अंग तक पहुँचे तो बहुत संख्या हो जाती है। उतनी रचना अंतर्मुहूर्त में वो कर सकते हैं और उसका ज्ञान लब्धि से मुनियों को, आचार्यों को होता है, सम्यक दृष्टियों को होता है। ऐसे सूत्र का विस्तार है, उसमें बहुत से विषय आ जाते हैं कई प्रकार। हाँ, वो मूल अध्यात्म का जो विषय है वो विषय 5 पूर्वों में होगा, तो 10वां पूर्व से वो ज्ञान प्रवाद है, ज्ञान प्रवाद, दृष्टि प्रवाद, ऐसे ऐसे हैं। तो आत्मज्ञान क्या है, आत्मदृष्टि क्या है, वो विषय पर गंधर्व देवों ने खोला होगा, वो विषय चला है वहाँ, जो सम्यक दृष्टि को ही समझ में आता है। मिथ्या दृष्टि को वो रहस्यभूत विषय होने से समझ में नहीं आता है। अत्यार जो श्वेतांबर के शास्त्र हैं वो तो 1500 साल पहले इधर वल्लभीपुर में लिखे हुए हैं, भावनगर से 42 किलोमीटर पर वल्लभीपुर करके एक पुराना टाउन है, उस जमाने में वहाँ विशेष आबादी होगी, लेकिन अब तो एक छोटा सा टाउन है, तहसील तालुका जिसको बोलते हैं ऐसा। वहाँ श्वेतांबर साधुओं का एक बड़ा अधिवेशन हुआ था और देवर्धि गणी करके जो मुख्य नेता था वहाँ का, उन्होंने आदेश दिया कि अपने भी शास्त्र होने चाहिए। तो जिसको जो बात कंठस्थ थी और दूसरी दूसरी बात करके सब शास्त्र बनाए हैं, लेकिन वो ओरिजिनल नहीं है। कुछ बात उसमें स्मृति में जो रही वो आई भी है, लेकिन ज़्यादा करके उसमें और दूसरी दूसरी बात जिसको जैसे लगी वैसे उसमें लिखी है, ओरिजिनल नहीं है, अंगपूर्व ओरिजिनल नहीं है। तो ओरिजिनल तो जो है वो पहले लिखे ही नहीं थे, सब कंठस्थ थे, 500 साल तक कंठस्थ थे। फिर ग्रंथारूढ़ होने लगा हो तो जो षटखंडागम पहले जो हुआ वहां से ग्रंथारूढ़ हुआ, जो पुष्पदंत और महाबली ने लिखा, उसके पहले दर्शनाचार्य इनके गुरु थे, वहां तक सब कंठस्थ थे। और पुष्पदंत महाबली को भी कंठस्थ हो गया, लेकिन उनको आदेश दिया गया था कि आप उसको ग्रंथारूढ़ कर लो, बाद में जो मुनि लोग होंगे वो उतने क्षोभसम वाले नहीं होंगे, कि जो बात स्मृति में रहे। तो उन्होंने इस रूप को पहले ग्रंथारूढ़ किया, उसके बाद जो जो भी आचार्य हुए सब लिखने लगे, तो उसकी परंपरा में दिगंबर आचार्यों के ग्रंथ है। मूल अंग पूर्व तो लिखे नहीं है, तो मूल अंग पूर्व तो है ही नहीं कहीं। बाकी जो ज्ञानी हुए, आचार्य हुए, भावलिंगी संत हुए, उनके उनको जो परंपरा से जो ज्ञान करणानुयोग का और अध्यात्म का और चरणानुयोग का, सारोनुयोग का जो भी रहा, जितना भी, उतना उन लोगों ने ग्रंथारूढ़ किया है और उसी आचार्यों का नाम आता है। आचार्य ने, इस आचार्य ने ये ग्रंथ की रचना की, वो आचार्य ने इस, उसको अंगपूर्व का नाम दिया जाता नहीं है। वो चर्चा मोक्षमार्ग प्रकाशक में काफी टोडरमल जी ने किया है पहले अधिकार में। बार का सार स्वानुभूति है, स्वानुभूति में 12 अंक का ज्ञान समाविष्ट है। वो बात राजमल जी ने समय सार के कलश टीका में 13वें कलश में वो बात किया है। 13वें कलश में 12 अंक तो विकल्प है, इसका कोई इतना मूल्य नहीं है जितना मूल्य अनुभूति का है। और 12 अंग में भी अनुभूति करने का ही विधान है, इसलिए जिसने अनुभूति किया उसको, स्वानुभूति संपन्न जीव को समयसार के 9वीं 10वीं गाथा में श्रुत केवली कहा है। तो क्या बात, उसको क्या दिया, उसको श्रुत केवली बोला है। क्यों? कि श्रुत मैंने ज्ञान, ज्ञान स्वभावी, ज्ञान मात्र आत्मा का, केवल मैं ज्ञान मात्र हूँ, ऐसा आत्मा का जिसको अनुभव है, केवल निज स्वभाव में अखंड वर्ते ज्ञान, कहिए केवल ज्ञान से देह सता निर्माण, तो उसको केवल ज्ञान बोल दिया, आत्मा का ज्ञान, तो उसको श्रुत केवल बोले हैं। तो अनुभूति तो हो सकती है, 12 अंक का ज्ञान होना संभव नहीं है, इतना सूक्ष्म होना वो अभी के जीवों की कैपेसिटी नहीं है, लेकिन अनुभूति हो सकती है। अनुभूति कर लिया तो 12 अंक का सार तो आ गया इसमें, वो कर सकते हैं। तो उसके लिए यथार्थ प्रकार से, गंभीरता से और पूरा उद्यम से, पूरी शक्ति से पुरुषार्थ या प्रयास करना है, क्योंकि वो कर सकते हैं। अनुभूति होने से जीव संसार को तिर जाता है, उसका जन्म मरण का नाश उसी क्षण में, अनंतता का नाश हो जाता है, अनंत जन्म मरण उसको रह सकते हैं नहीं, ऐसा प्रभाव है अनुभूति का। अनुभूति करने के लिए मुख्यतया वर्तमान में जो भी ज्ञानी होते हैं उसका अनुभूति करने का ही उद्देश्य होता है। अनुभूति कैसे हो, आत्म आचारण का पहला सूत्र है वो, गंधर्व देव का प्रथम अंग का प्रथम अध्याय का प्रथम सूत्र है। जो एकम जाने सो सबम जाने, कृपाल देव के ग्रंथ पे मोनोग्राम है, निर्ग्रंथ निर्ग्रंथ प्रवचन। એ તો એક જ છે, ના ક્રોધમાં ક્રોધ છે, ક્રોધ 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 સિવાય ક્યાં હોય એમ કે છે, કે ક્રોધ ક્રોધમાં જ હોય, ઉપયોગ ક્યાં હોય, કે ઉપયોગ ઉપયોગમાં જ હોય, હા ઉપયોગ સ્વરૂપી આત્મા છે, પછી ત્યાંથી ઉપયોગ સ્વરૂપી આત્મા લેવો છે, ઉપયોગમાં ઉપયોગ કહીને, ઉપયોગ સ્વભાવી જ્ઞાન સ્વભાવી આત્મા કા નિર્દેશ કરના હૈ। और हाँ, और विभाव और स्वभाव के बीच में भेद ज्ञान करने कराने का प्रयोजन है, प्रयोजन तो वो है भेद ज्ञान कराने का। हाँ है की बात है कि तुम्हारा जो क्रोध का पर्याय है वो ज्ञान में नहीं है, तो अपने आप में ही है क्रोध में, मैंने अपने आप में ही है। हाँ ऐसे उपयोग है, ज्ञान है, वो ज्ञान में है, वो क्रोध में नहीं है। इस प्रकार से दो प्रकार के भाव हैं, अलग अलग हैं, उसको अलग अलग अनुभव करो। एक रूप अनुभव क्यों करते हो? मैं क्रोधी हूँ ऐसा क्यों ज्ञान में अनुभव होता है? झूठा अनुभव, ज्ञान क्रोध रूप होता नहीं, अज्ञानी का ज्ञान भी क्रोध रूप हो नहीं जाता। जो भिन्न है उसको भिन्न अनुभव करो, ये उपदेश है। अनेक प्रकार ने उपयोग ने प्रवृत्ति है, उपयोग की प्रवृत्ति के अनेक प्रकार हैं। तो जैसे जैसे जितने जितने प्रकार हैं उतने उतने अनुभव गोचर होते हैं, उतनी उतनी बातें उन विषय में प्रसिद्ध होती है। तो उपयोग भी एक प्रकार से प्रवृत्ति नहीं करता, कभी खुद खिंचान में आता है, खिंचाव में आता है तो उपयोग लगता है, उपयोग जाता है ऐसा कहते हैं। कभी वैसे ही नहीं जाता है और ये ज्ञान में झलक जाता है, ऐसा भी बनता है। तो उपयोग की प्रवृत्ति के प्रकार है। नहीं तो जितने जितने प्रकार है उतने उतने बताए, फिर जो जो प्रकार है उस प्रकार में कैसी कैसी पोजीशन होती है, उससे लाभ क्या है, उससे नुकसान क्या है, वो सब दिखाने में आता है। जैसे कि उपयोग खींच करके जाता है ज्ञेय के प्रति, तो उसमें नुकसान होता है, परसन्मुखता होती है, परसत्ता का अवलंबन होता है, और वो राग नियमितिक रूप से चारित्र गुण में राग के राग को पैदा करता है। उसके निमित्त से चारित्र गुण में राग द्वेष मोह होता है, क्योंकि उपयोग बाहर खींचाता है, तो बाहर नहीं खींचाता है तो राग द्वेष नहीं भी हो ऐसा। तो जहाँ भी जो परिस्थिति है उसका फिर विशेष बात विशेष वर्णन किया जाता है। हाँ भेद अपेक्षा है, त्रिकाली का वर्तमान स्थिति रूप भेद, हाँ वो भेद को देख करके, भेद को बता पर्याय के नाम से भेद को बताया है, वो लिखा है वहाँ परिसमंतात भेदम इति इति पर्याय, भेद को प्राप्त हुआ इसलिए पर्याय कहते हैं, उत्पाद भी है इसलिए पर्याय नहीं कहते हैं। वस्तु तो त्रिकाल अखंड है, फिर भी अवलंबन में इसका वर्तमान आता है, तो उतना भेद पड़ गया इसलिए उसको पर्याय कहते हैं, इसलिए पर्याय। हाँ त्रिकाली का वर्तमान, और अवलंबन तो वर्तमान में आता है ना, भूत भविष्य का अवलंबन थोड़ी ना हो सकता है, नहीं हो सकता, इसलिए अवलंबन का विषय तो वर्तमान द्रव्य है, वो वर्तमान वर्तता द्रव्य है, तो उसको पर्याय का नाम दे दिया। और पर्याय का नाम क्यों दिया वो सवाल हो सकता है, भेद ऐसा लिखना था, पर्याय क्यों लिखा? क्योंकि तो उसमें वो बात है कि कोई भी शब्द का जो भी अर्थ है, प्रचलित अर्थ है, उसको पकड़ के मत रखो, जहाँ जो भी जिसका अर्थ गठन होता है योग्य हो वो कर लो, पकड़ के मत रखो कि पर्याय मैंने उत्पाद वे वाली अवस्था, ऐसा नहीं पकड़ कर रखो। जहाँ जो भाव होता है, जहाँ जो अभिप्राय है, जहाँ जो प्रकरण है, जहाँ जो कहने का हेतु है उसको समझो। और जीव को पर्याय की बहुत चिंता है, किसकी चिंता करते हैं? पर्याय की चिंता करते हैं, तो कहते हैं कि तुम्हारे वर्तमान जो त्रिकाली का वर्तमान है वही तुम्हारी पर्याय है, चिंता मत करो, पर्याय की उत्पाद वाली वाली पर्याय की चिंता छोड़ो, तुम्हें वर्तमान में ही पर्याय रूप हो। ऐसा करके उसकी चिंता छुड़ा दी। पर्याय दृष्टि छुड़ाना है ना, दृष्टि कराने के लिए उसको पर्याय बोला। तो तुम्हारी नजर पर्याय से नहीं हटती है ना, तो तुम्हारा स्वरूप ही पर्याय रूप है, कारण शुद्ध पर्याय रूप तुम ही हो अभी। ऐसा करके वो पर्याय का लक्ष्य छुड़ा दिया। ऐसा ये भी शुद्ध होना चाहिए, तो ये भी शुद्ध है, वो तीनों अवस्था से शुद्ध है, तो ये भी अवस्था से तो शुद्ध होना चाहिए ना। तो ये वर्तमान जो है वो शुद्ध है, वर्तमान है वो शुद्ध है, प्रत्येक वर्तमान में शुद्ध अवस्था रूपी है, शुद्ध स्थिति रूप है, अवस्था को स्थिति को है। गुरुदेव ने इतना उपदेश दिया, 45-45 साल तक अनुभूति करके दिखाया, अनुभूति करके सब बात बताई। अब तो अपना अपनी जिम्मेवारी होती है कि हम गुरुदेव का अनुसरण करें या उनके उपदेश को, उनकी आज्ञा को शिरोधार्य करें, हम उसको गिरने नहीं दें। ये हम लोगों की जिम्मेवारी है। हम बहुत साल पहले आगरा गए थे, तो पतले से है ना वो नेताजी, नेताजी आते थे। नेताजी करके हैं, दुबले दुबले से हैं। वैसे तो सामाजिक कार्यकर है, लेकिन सामाजिक कार्यकर भी बुद्धिमान तो होते, मूल दिगंबर है, सुनने को आए। अच्छा, कांजी स्वामी का ऐसा उपदेश है, हमको मालूम नहीं था। हमको कहीं उठपटांग बातें सुनते थे, और समाज में तो सभी का कोई विरोध तो होता ही है थोड़ा बहुत, तो जब विरोध होता है तो बात तो विरोधी लोग तो उठपटांग करेंगे ही करेंगे, उल्टी सुलटी तो बात चलेगी ही चलेगी। तो दिगंबर संप्रदाय में तो गुरुदेव के विषय में, तीनों संप्रदाय में उल्टी सुलटी बात तो चलती है, तो दूर से तो लोगों को मालूम नहीं पड़े। क्यों उनके अनुयायी लोग का परिचय होता है तब तो मालूम पड़ता है। तो फिर वो बोले कि इतना सुंदर उपदेश है, इतनी सुंदर बात बताई है, तो आप लोगों को इसका प्रचार करने की जिम्मेवारी है, आप क्यों प्रचार नहीं करते हैं? इस बात को टिकाए रखने का आपकी जिम्मेवारी है। तो इसलिए तो हम भावनगर से आगरा तक आए, तो इसलिए अगर हम प्रचार नहीं करते तो आगरा तक कहाँ से आते? तो जब जब जाते वो आते, तो अभी भी सुनने को आता है। तो उनको लगा कि ये कोई बात का कीमत है, कोई समझने जैसी बात है। जिम्मेवारी है कि एक तो अपन उसका अनुसरण करे, अनुसरण करे और उसका प्रचार प्रसार करे, और अपने आप को ठीक उनका नाम रोशन हुए ऐसा ही बर्ताव करे। ऐसा नहीं हुए तो देखो एकांजी स्वामी वाले झगड़ने लगे, ऐसा करने लगे, वैसा करने लगे, तो वो बात नहीं अच्छी नहीं दिखती।
मैनपुरी में एक उसने उतराव किया था कि एक के बाद गुरुदेव की ऐसी प्रचार करने के, जैसे वो दिल्ली में जो बोलते हैं समाचार में,
हाँ नहीं अच्छी बात है, होनी चाहिए प्रचार तो।
ऐसी बात है, सरस बात है, ऐसी प्रचार होना।
इसका मतलब ये हुआ कि गुरुदेव के अनुयायियों का बर्ताव ऐसा होना चाहिए कि गुरुदेव के प्रति आकर्षण पैदा हो, ऐसा मतलब तो ऐसा होना ही चाहिए, वही सुसंगत है, ये बात सुसंगत है। કરતા ના મતલબ પ્રવચન સ્વાધ્યાય રાખે, तो व्यवहार की बात है, भार में जो व्यवहार है उसमें व्यवहार शुद्धि होनी चाहिए। निश्चय में कहाँ व्यवहार है, निश्चय में तो व्यवहार है नहीं। आप कोई भी काल में स्वानुभव करो, कोई काल आपके लिए अकाल है ही नहीं, सब स्वकाल ही है, निश्चय में कोई व्यवहार की बात है ही नहीं। निश्चय का परिणाम जब भी हुए उसमें कोई आपत्ति नहीं, कोई बाधा नहीं, कोई विधि निषेध है ही नहीं उसमें।
पवित्र होए आप पवित्र होगा,
हाँ, खुद में खुद का परिणमन हो गया, उसमें काल बाल की तो कोई लेना देना है ही नहीं, कोई गिनती नहीं है, कब भी हो सकता है, कब भी कर सकते हैं। वो सिद्ध परमात्मा निरंतर डूबे हुए रहते हैं, मुनिराज तो क्षण में छूटते हैं, क्षण में आते हैं, वो तो निरंतर रहते हैं, तो क्या करें, छोड़ दे क्या? उसमें कोई दोष नहीं लगता, निश्चय में कोई दोष
नहीं लगता।
दोष निर्दोषता जो व्यवहारिक बात है वो व्यवहारिक दोष है, समझनी चाहिए, देखनी चाहिए और व्यवहार में उसका पालन भी करना चाहिए। व्यवहार से व्यवहार की स्थापना है, व्यवहार की स्थापना व्यवहार से है और व्यवहार से जो व्यवहार की स्थापना है वो न्याय संपन्न है, इसलिए वो व्यवहार के स्थान में समुचित है, उचित है, उसको उसके स्थान में रखे, ऐसे भाई उतनी सी मर्यादा है उसकी। तो भरत क्षेत्र में ऐसा होता है, ऐसा केवल ज्ञान में आया है और ऐसा ही होता है, जैसा होता है ऐसा ज्ञान में आया और ज्ञान में आया ऐसा होता है। तो एक कुदरती व्यवस्था है, 63 सदा का पुरुष होते हैं। हाँ, क्षेत्र में उसमें 12 तीर्थंकर हैं और बाकी नारद है, वासुदेव है, प्रतिवासुदेव हैं, चक्रवर्ती हैं, वो सब होते हैं। महाविद्या क्षेत्र में तो कितने भी होते हैं। हाँ, मैक्सिमम 160 या एक साथ 160 हो ऐसा ऊँचा ऊँचा है। 20 तो हुए ही हुए, अभी 20 अभी तो है, 20 से कम होते नहीं और 160 से ज़्यादा होते नहीं। वो जो 24 का फिगर है वो तो भरत क्षेत्र के लिए है, महाविद्य फिर तो ऐरावत महाविद्य के लिए नहीं है। दोनों महाविद्य भी दो है, उसमें मिलकर के 10 इधर 10 ऐसे 20 होते, दोनों में 10-10 होते। सब जानकारी करने की बातें हैं, स्वरूप का कुतूहल करना चाहिए। कल आया ना, अपना स्वरूप का कुतूहल करो, और बातों का कुतूहल से कोई फायदा नहीं। एक बार स्वरूप कैसा है मेरा, उसकी अपूर्व जिज्ञासा और अपूर्व कुतूहल वृत्ति आए तो उसका पता लग जाएगा। पता लग जाएगा तो अनुभव अनुभूति में पहुंच हो जाएगी, पता लगने से पहुंच होती है। तो कहना है कि ऐसे ऐसे दिन आते हैं तो भूतकाल के तीर्थंकर आदि महात्माओं का स्मरण किया जाता है। संप्रदाय में बहुत उत्साहपूर्वक ऐसे दिन मनाए जाते हैं और ऐसे दिन मनाने के उत्साह में लोग ऐसे समझते हैं कि अपने को कृत्य करके समझ लेते हैं कि चलो आज महावीर स्वामी का जन्म कल्याणक दिन था, हमने जुलूस निकाला, जोर जोर से नारे लगाए और बस कुछ कर लिया। तो वो बात पर उन्होंने ध्यान खींचा है कि इससे कोई फायदा नहीं है। अगर वर्तमान में आपको कोई ज्ञानी पुरुष मिलता है तो अपना आत्मकल्याण कर लो। ऐसे तो नारा लगा करके कुछ भी करोगे अनंत बार हर साल करते हो, अनंत बार किया है, अनंत काल में ऐसा ही किया है, इससे कोई आपको लाभ तो हुआ नहीं। तो वर्तमान में कोई ज्ञानी पुरुष हो, उनके संग में चले जाओ, उनके चरण में चले जाओ, तो आपका कल्याण हो जाएगा। तो उस पर लिखा है कि वो भूतकाल के महावीर को खोजने के लिए भूले हुए जीव वर्तमान महावीर को के पास क्यों नहीं आते हैं। तो भगवान महावीर में जो निमित्तत्व था दूसरों का आत्मकल्याण होने का, वही निमित्तत्व ज्ञानी में होता है। तो उनके लिए ध्यान खींचा है कि आप प्रत्यक्ष को खोजो, परोक्ष को छोड़ करके प्रत्यक्ष को खोजो। प्रत्यक्ष सदगुरु सम नहीं, परोक्ष जिन उपकार, एवो लक्ष्य थया विना उगे न आत्मविचार। और मुद्दे की बात किया है, बात की ओर क्या होता है कि वर्तमान में ज्ञानी होता है तो उनको पहचानते नहीं, भविष्य में फिर इनकी छवि लगा कर हार लगाते हैं, वर्तमान में तो उनकी समझ कोई आती नहीं, तो ऐसे भूल हो जाती है। लाभ होता है तो वर्तमान से होता है, भूतकाल के ज्ञानी से स्वरूप स्थिति संभव नहीं है। उनका स्मरण करने से, थोड़ा चिंतन करने से कसाई की मनता हो गई, लेकिन स्वरूप स्थिति संभव नहीं है। ध्यान प्रत्यक्षता पर दिया है, दिलवाया है, प्रत्यक्षता का मूल्य आना चाहिए। और अनंत काल में जीव वहाँ ही बुला है, प्रत्यक्ष ज्ञानी का अनुसरण करने में ही भुला हुआ है, इसलिए परिभ्रमण चालू है। अगर किसी वर्तमान में ज्ञानी को पकड़ लेते तो परिभ्रमण रहने वाला नहीं था। प्रत्यक्षता में तो बहुत फर्क पड़ता है। देखो ना, प्रत्यक्ष आप किसी का मृत्यु सुनो और देखो कितना फर्क पड़ता है, एक्सीडेंट का फोटो देखो और प्रत्यक्ष देखो जो कितना फर्क पड़ता है, बहुत असर आता है। प्रत्यक्षता का असर उतनी असर आवे कि इतनी असर परोक्षता में किसी भी साधन से नहीं आवे। ये लोग टीवी देखने को वहाँ क्यों जाते हैं, क्रिकेट देखने को वहाँ क्यों जाते हैं, टीवी में तो इससे अच्छा आता है, नज़र से देखने से बजाय टीवी में तो इससे ज़्यादा दिखाई देता है, वहाँ तो स्लो मूवमेंट दिखाता है। प्रत्यक्षता में तो कुछ नहीं दिखे, वहाँ उस आँख का पलकार लग गया तो गया सीन, मैं वहाँ तो एक्शन रिप्ले करते हैं, स्लोली करते हैं, सब होता है, वो डिवाइस है वहाँ। प्रत्यक्षता में तो कोई व्यवस्था ऐसी नहीं है, जब भी उसने कैच किया, फटका लगाया, उस वक्त अपना आँख का पलकारा लग गया तो देखने में नहीं आएगा, गया वो तो अच्छा, फिर भी क्यों देखने को जाता है। इसका रस और असर जो प्रत्यक्षता में आता है वो परोक्षता में नहीं आता है। तो मजा लेने के लिए प्रत्यक्ष पे जाते हैं, सबके अनुभव की बात है। तो उपदेश का प्रत्यक्षता में जो असर आता है वो परोक्ष उपदेश से असर कभी भी नहीं आ सकता, ऐसा प्रत्यक्षता का विशेष प्रभाव है। और उस प्रैक्टिकल साइड से समझ में भी आता है, फिर भी जीव भूल जाता है, इस विषय में भूल जाता है। बाहर में तो सब प्रत्यक्ष ही चाहिए उसको, बाहर में वो परोक्षता नहीं पसंद करता, जबकि इधर भूलता है, भूलता है तो नुकसान इसको दंड इसका भुगना पड़ता है। એને વચ્ચે મેળ છે, એમ કે જૈસે લોકી આકૃતિ હૈ વૈસે મનુષ્ય કી આકૃતિ હૈ, તો ઉસમેં ભેદ મેને કુછ રહસ્ય હૈ, દોનો બાત મેં કુછ રહસ્ય હૈ, વો રહસ્ય આપ સમજે કે નહીં સમજે, ऐसा प्रश्न उठाया है। खुद ने खोला नहीं है लेकिन प्रश्न उठाया है, तो इसके पीछे ऐसा लगता है कि जहाँ जहाँ मनुष्य का उत्कृष्ट अंग है वहाँ भी लोक में भी ऐसी ही बात है कि जैसे मस्तिष्क है वहाँ शिथिला है, ये सबसे उत्कृष्ट अंग बोला जाता है, उस तरह से मध्य लोक इधर है तो मनुष्य लोक है मध्य में है, तो वहाँ का भी संकेत है कि वहाँ से मोक्ष जाने का अच्छा मौका है, वो मध्यम कक्षा के वहाँ परिणाम होते हैं। मध्य लोक में कैसे परिणाम होते हैं जीवों को, मध्यम कोटि के परिणाम होते हैं, तो तीव्र राग नहीं होता जैसे देवलोक में होता है, तीव्र द्वेष नहीं होता जैसे नारकी में होता है, तो वहाँ से जाने का मौका अच्छा है। ऐसा करके कुछ कुछ बातें ऐसे मेल खा जाए इसलिए वो बात का संकेत किया है ऐसा लगता है। हाँ बंद रखे आज बपोर नहीं निकालनी, बपोर नहीं चर्चा बंद रख।
आज
ने